वन्देहम्। श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलम्, श्रीगुरो वैष्णवांश्च, श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। साद्वैतां सावधूतां परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा सहगना ललिता श्रीविशाखास्तुतं। जयो राधा माधव कुञ्ज विहारि, जयो राधा माधव कुञ्ज विहारि, गोपीजन वल्लभा गिरिवर धारि, यशोदा नन्दन व्रज जन रंजन, यशोदा नन्दन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारि, यमुना तीरा राधा माधव कुञ्ज विहारि, जय जगन्नाथ जन्नाथ बलदेव जय सुभद्र, जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद।
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरमस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज यहाँ पर आप सब भक्तों की सेवा का अवसर मिल रहा है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये अवतार भगवान का बहुत ही दयालु अवतार है। अभी पिछले सप्ताह मैं जगन्नाथ पुरी में था रथ यात्रा के लिए, और बहुत ही विशेष ये धाम में रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मुझे पता चला कि यहाँ पर पिछले सप्ताह चर्चा हुई थी जगन्नाथ लीला के लिए, जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए और कैसे उनकी आंखें बड़े हैं, ऐसे डिस्कशन में जगन्नाथ जी का अवतार जो है विशेष है, क्योंकि इस अवतार में भगवान की करुणा बहुत ज़्यादा है, दया। मैं कुछ एक दो कथाएं बताना चाहूँगा जगन्नाथ जी के, और बाद में थोड़ा हरि नाम के बारे में बोलना चाहूँगा। भगवान जगन्नाथ सबका ख्याल रखते हैं, विशेष करके जो भक्त उनकी शरण में आए। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, वन कैन एक्सपीरियंस द मर्सी ऑफ द लॉर्ड इन प्रपोर्शन टू हिज डिपेंडेंस। जितना हम भगवान की कृपा के ऊपर भरोसा करेंगे उतना ज़्यादा कृपा की प्राप्ति होगी। भगवान की दया सबके लिए है, लेकिन हम कितना ग्रहण करते हैं वो हमारी पात्रता पर निर्भर है। जैसे एक सागर है, विशाल सागर है, वापिस ज़्यादा दूर नहीं है सागर है, ये अरेबियन से है। उस सागर से कितना पानी निकाला जा सकता है, सागर में कितने लीटर पानी होगा, 1000 लीटर, 1000 गैलन्स, 10,000 कितने होगा। यहाँ पे कौन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, कोई इंजीनियर, एनीबडी इज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हियर? यस प्रभु, हाउ मेनी लीटर्स वाटर इज देयर इन द ओशन? 1000, 10^9, 10^13, अनलिमिटेड, प्रैक्टिकली अनलिमिटेड। तो ये सागर में जो पानी है वो अनंत है, और मान लो मैं जाता हूँ और मैं सागर से कुछ पानी लेना चाहता हूँ तो मैं कितना लेके आ सकता हूँ, वो इस पर निर्भर है कि मेरा पात्र कितना बड़ा है। अगर मैं एक बिस्लेरी बोतल लेके जाता हूँ तो 1 लीटर प्राप्त होगा, अगर मैं एक प्लास्टिक का बकेट ले जाता हूँ तो 5 लीटर मिल जाए, और अगर मैं चाहे 10,000 लीटर निकाल सकता। ये बुद्धिमान व्यक्ति है जो एक सागर से एक कनेक्शन ले लेता है पाइप का, जिसे जितना चाहिए पानी में। तो हमें भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना है। भक्ति योग मीन्स टू लिंक विद कृष्णा इन द हार्ट। और वो कैसे लिंक होगा, उसके लिए कनेक्शन चाहिए, वायर चाहिए। जैसे अभी ये पंखा चल रहा है यहाँ पर, इसको शक्ति मिल रही है, जनरेटर यहाँ पर नहीं है लेकिन जनरेटर से कनेक्टेड है। तो अगर आपके पास एक जनरेटर है, एक पावर स्टोर है, अगर आप उससे लेना चाहते हैं पावर, तो आपको एक वायर से जोड़ना होता है। और कितना करंट प्राप्त होगा ये किसके ऊपर निर्भर है, पावर हाउस समझो, सेम वोल्टेज है 230 सब जगह पर, लेकिन जो वायर है कनेक्शन करने वाली उसमें कितना रेजिस्टेंस है। अगर उस वायर में रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा आएगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम आएगा, करेक्ट। वी इज इक्वल टू आई आर, मतलब वोल्टेज है करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, इज दैट करेक्ट। 40 साल पहले मैंने पढ़ा था, अभी भी वैलिड है शायद, नहीं उसको बोलते हैं ओम्स लॉ, है ना। ओम यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नहीं है। तो ओम्स लॉ क्या है कि जितना आप अगर ज़्यादा करंट चाहते हैं तो कम रेजिस्टेंस वाली वायर को जोड़िए। देखिए हमारे हृदय का अहंकार जो है वो रेजिस्टेंस है भगवान के भक्ति में, वो हमारे ऑब्स्टेकल है। अहंकार बहुत ज़्यादा है, मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं सीनियर ब्रह्मचारी हूँ, मेरी लंबी शिखा है, मैं ज़्यादा अच्छा लेक्चर देता हूँ, मेरी कृपा से इतने पतितों का उद्धार हो रहा है, मैं पतित पावन हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको बहुत कम कृपा मिलेगी। अगर आप भगवान की कृपा ज़्यादा चाहते हैं तो क्या सोचना चाहिए कि मैं सबसे पतित हूँ। ये आपको मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, रहस्य जो श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, एक सीक्रेट है। एक लाइन में बताऊँ अभी शास्त्र को, अभी बताऊँ, कल सुबह भागवतम देने वाला उसमें बताऊँ, अभी बता दिया तो कल सुबह कोई आएगा ही नहीं, ठीक है। मैं आधा अभी बताता हूँ, आधा कल बताऊँ। सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है किताब में, ओपन सीक्रेट प्रभुपाद लिखते हैं। प्लीज लिसन, पहले अंग्रेजी बोलूंगा तो प्रभुपाद के शब्द है। द मोर फॉलन वन इज द मोर हिज क्लेम टू रिसीव द फेवर ऑफ लॉर्ड चैतन्य। इसका हिंदी में अनुवाद है, जितना ज्यादा कोई पतित है उतना उसको अधिकार है भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो बहुत पति, जैसे अभी ये यहाँ पर ऊपर नदी बह रही है हाइट पर, और एक रास्ता नीचे जा रहा है और एक मिट्टी का रास्ता ऊपर जा रहा है, तो नदी का प्रवाह नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ऐसी भगवान गौरांग की कृपा है तो पतितों पे ज़्यादा होती है। भगवान का नाम है पतित पावन, है ना, जगन्नाथ के हैं पतित पावन है पुण्य पावन, भगवान ऐसे नहीं है ब्रह्मचारी पावन है, एक गृहस्थ पावन है। भगवान ही देखते हैं आपके कपड़ों का साइज क्या है, आपका हैंडसेट स्मार्टफोन है कि सिंपल है, ड्यूअल सिम है कि सिंगल सिम है, आपके पास कितना धन है। दीनेर अधिक दया करे भगवान, कुड़ी न पंडित बड़े अभिमान। दीनों पे ज़्यादा दया करते हैं भगवान, जो अपने आप को सबसे गिरा हुआ मानता है, जो सोचता है मैं सबसे पतित हूँ, भगवान जगन्नाथ की कृपा का पात्र बन जाता है। और मैंने आपको सबसे बड़ा सीक्रेट बता दिया, ये सीक्रेट अगर आप पालन करोगे तो इसी जन्म भगवत धाम जा सकते हैं, अभी नहीं शरीर छोड़ने के बाद। अभी सब चले गए थे शास्त्र प्रभु मेरे पे गुस्से आ जाएंगे, भी आपने क्या किया हमारे सेंटर के सब भक्तों को भेज। ये लाइन को हमेशा याद रखे, भगवान मैं सबसे पतित एंड द मोस्ट फॉलन, पतित पावन ये तू तब अवतार मोसम पतित प्रभु न पाई बेयार श्री कृष्ण चैतन्या दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे। प्रे लाइक दिस, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। जो ये भजन किसने लिखा है, नरोत्तम दास महाजन आचार्य, महाजन ये न गत स पंथ, जो महापुरुषों का मार्ग है, जिन्होंने कृष्ण भक्ति में सफलता प्राप्त की है, उन महात्माओं के पद चिन्हों में चलने से हम पूर्णता प्राप्त कर सकते। भक्ति बहुत सरल है अगर आप सरल हैं, और भक्ति बहुत कठिन है अगर आप जटिल हैं। सिंपल फॉर द सिंपल, कॉम्प्लेक्स फॉर द कॉम्प्लेक्स। सरल क्या है, जो बड़े बड़े भक्तों ने किया है उनके पद चिन्हों में चलते हो। ये मुझे मालूम नहीं बम्बई का रास्ता कहाँ है, लेकिन सामने कोई एक भक्त है वो बोलता है मेरी कार है, आप बस उसे पीछे चलते जाओ, वो हाईवे पकड़ते हैं सीधा, हाईवे पे सीधा चलते जाओ, बस मुझे कुछ करना नहीं है। जिसको रास्ता मालूम है उसके पद चिन्हों में चल, लेकिन अगर मैं अपनी बुद्धि लगाता हूँ प्रभु जी इधर से जा रहे हैं लेकिन यहाँ शॉर्टकट है, मराठी बोलते हैं जास्त शाना, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन माई गुरु, मैं शॉर्टकट निकालूंगा। गुरु जी बोल रहे हैं सुबह उठना चाहिए जप करना चाहिए, लेकिन मैं शॉर्टकट निकालूंगा, सुबह उठे बिना जप के ही भगवत धाम चला जाऊंगा। अभी मैं सीनियर डिवोटी हो गया। प्रभुपाद हैज गिवन वेरी सिंपल फॉर्मूला। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक जन्म में भगवत धाम जाना बहुत मुश्किल बात है। भरत महाराज को कितना समय लगा, 3 जन्म। और भरत महाराज कोई नए डिवोटी नहीं थे, ऐसा नहीं थी कि लाइफ मेंबर बने पहले जब करना एक साल बाद शुरू किया। भरत महाराज जब हरे कृष्ण मंत्र बोलते थे तो उनकी आंखों से आंसू आते, भगवान के भाव अवस्था में प्रेम से बस एक स्टेज पे, नौजवानी अवस्था में अपने घर को छोड़ दिया, पत्नी बच्चे महल, भरत महाराज महल में रहते, वो कोई छोटे से 1 BHK 2 BHK में फ्लैट में, बड़े महल में रहते, सब कुछ छोड़ दिया। और उन्होंने देखा एक हिरण डूब रहा है, उसको बचाने गए, उसको बचा लिया, उसके साथ मंगल आरती में भी हिरण, जपा में हिरण, देर इज माई डियर, उसकी कॉन्शियसनेस पूरे डियर में चली। तो आप में से अधिकांश डिवोटी गृहस्थ आश्रम में है, नेचुरली आपको अपने बच्चों से, अपने परिवार से, पति पत्नी से आसक्ति होगी, उसके बिना तो जी नहीं सकते। लेकिन मन में जानना चाहिए कि जितना आपका परिवार के प्रति प्रेम है उससे ज़्यादा प्रेम जगन्नाथ से होना चाहिए, क्योंकि जिसके प्रति आपका ज़्यादा आसक्ति है अंत समय में वही विचार आएगा। और जो विचार आपको अंत समय में होगा वो आपका अगला जन्म होगा। ऐसा नहीं है कि मैं इस्कॉन में आ गया, मेरी दीक्षा हो गई तो मेरा बेड़ा पार हो गया, नहीं। हमें कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना, जगन्नाथ के प्रति। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भरत महाराज इतने बड़े भक्त थे, अभी माया में प्रभावित हो गए, उनको संग नहीं मिला। अगर भरत महाराज इस्कॉन सेंटर में होते, भक्तों के साथ होते, तो कोई सीनियर डिवोटी शास्त्र बोलते उनको, प्रभु जी आप मंगल आरती में आपके दर्शन नहीं हुए। ये बहुत मीठा तरीका होता है डांटने का, है ना, प्रभु जी क्या बात है आप जप नहीं कर रहे। सच्चा मित्र कौन है, आपका सच्चा गुरु भाई या गुरु बहन कौन है जो आपको याद दिलाए भगवान के बारे में। ऐसा नहीं कि जो मित्र क्या है, मैं नहीं आऊंगा मंगल आरती में, आप भी बताना, आप चुप रहना मैं भी चुप रहूंगा। जियो और जीने दो, सो और सोने दो। सच्चा भक्त वो स्ट्रिक्ट होगा, जल्दी उठिए जप करना। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 16 माला मैंने रखा है बिगिनर्स के लिए, जो केजी स्टूडेंट होते हैं उसके लिए 16 माला रखा है प्रभुपाद जी। तो जैसे उम्र बढ़ती है जप भी बढ़ाना चाहिए, नहीं? जैसे छोटा बच्चा होता है, अभी छोटा बच्चा चलना सीखता है, आपका नाम क्या है? देव हरि प्रभु, करेक्ट, देव हरि प्रभु, प्रभु की दास, मेरे लिए प्रभु। देव हरि प्रभु जब भी छोटे थे वो चलना सीखते थे, तो यहाँ से लेकर वो पंखे तक चले बिना हाथ पकड़े, उसे माता पिता ताली बजाते, राइट? आपको याद है आपकी बाल्य लीला? तो थोड़ा सा चल दिए माता पिता, वेल डन, वेरी गुड। लेकिन मानो देवहरी प्रभु 15 साल होने के बाद भी बस इतना ही चल पाते हैं, तो माता पिता ताली बजाएंगे? जैसे आपके गुरुदेव ने आपको आज्ञा दी है कम से कम 16 माला करना, लेकिन आपको अपने आप से सोचना चाहिए कि मुझे कैसे जप बढ़ाना है, क्वालिटी और क्वांटिटी। मैंने पिछली बार शास्त्र प्रभु जी को प्रॉमिस किया था कि मैं 3 दिन का क्लास लूँगा, लेकिन वो पूरा ही नहीं हो पाया, पता नहीं कब पूरा होगा। लेकिन एक्चुअली आप सब जानते हैं जो मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन खाली उसका अभ्यास करना है कि कैसे जप को बढ़ाना है। श्री प्रभुपाद जी बोलते थे कि आप जान सकते हो कितना भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, कैसे जान सकते हो कि कितना आपको नाम में रुचि आती। हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख जप करते थे और फिर पानी पीते थे, यह प्रसाद खाते, 3 लाख मतलब 192 राउंड्स एक दिन में, राइट? विनायक मिस विनायक, यस माय ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम वृंदावन। प्रभु जी और मैं, विनायक प्रभु, हम लोग वृंदावन में जप करते थे निर्जला के दिन, बहुत डिटरमिंड भी होते। हम लोग करीब 64 माला जप कर लेते थे, बहुत कर लिया, लेकिन हरिदास ठाकुर 192 करते थे। हम साल में एक बार करते हैं, सोचते हैं बड़ा तीर मार लिया। हरिदास ठाकुर 192 करते। तो क्या गुण था हरिदास ठाकुर का जिसके कारण वो भगवान का नाम ज़्यादा ले पाते, उनका विशेष क्वालिटी क्या था? हरिदास ठाकुर का विशेष गुण था उनकी नम्रता, वो बहुत नम्र थे। वो हरेक वैष्णव को प्रणाम करते थे, बहुत सहनशील थे। हमें हरेक के हृदय में भगवान को देखना चाहिए, चाहे कोई नया भक्त हो, पुराना भक्त हो, कोई पुरुष शरीर में हो, स्त्री शरीर में हो, कोई किसी गुरु के डिसाइपल हो, कोई गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, या बॉर्डर से हो। हर स्थिति में देखना है मेरे जगन्नाथ, हर 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 जीवात्मा में देखना है कि भगवान कृष्ण निवास कर, जगन्नाथ सबके हृदय में। और जगन्नाथ की कृपा के लिए प्रार्थना। ऐसे अगर आप कृपा के लिए प्रार्थना करोगे तो एक दिन आपको भगवान के दर्शन हो सकते। मैं थोड़ा सा नाम जप के बारे में बोलना चाहता हूँ। शास्त्र प्रभु जी ने मुझे आज्ञा दी कि आप नाम वहां तक सुनाई पड़ रहा है पीछे तक, तो स्पीकर को बीच में रख सकते हैं कहीं पर, ये कुर्सी को ना थोड़ा बीच में रख देंगे क्योंकि यहाँ होने से वो फीडबैक आता है। बीच में रख, हरे कृष्णा अभी सुनाई पड़ रहा। नहीं इतना कर सकते हैं, इसको ना दो तीन कदम आगे रख दीजिए तो उससे वो दोनों का आपस में फीडबैक हो रहा है, थोड़ा सा हट जाइए जितना हो सके। हरे कृष्णा अभी सुनाई पड़ रहा, हरे कृष्णा अभी ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा अभी ठीक है। सबको सुनाई पड़ रहा है पीछे तक, सोचिए भगवान के धाम में साउंड सिस्टम भी नहीं जरूरत पड़ती। जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे तो मालूम आपको कौन सा साउंड सिस्टम लगाया था? नेचुरल। उस समय कोई डिस्टरबेंस नहीं होता था तो बिना साउंड सिस्टम के हजारों लोग सुन लेते थे। वैदिक हरे कृष्ण अभी ठीक है, पीछे सुनाई पड़ रहा है। तो मैं थोड़ा सा नाम जप के बारे में बोलना चाहता था कि हम कैसे धीरे धीरे नाम जप के क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। इसमें तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं नाम जप सुधारने के लिए। पहला है कि हम भगवान के नाम में श्रद्धा बनाए रखें, फेथ। वी शुड हैव कंप्लीट फेथ दैट कृष्णा इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज होली नेम। हमें ये श्रद्धा, पहला स्टेप श्रद्धा का ये है कि जानना कि भगवान कृष्ण में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते हैं सर्व जगत उद्धार। इस कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में आए हैं तो नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। अगर आपको ये बात मालूम होगी तो आपका जप बहुत अच्छा होगा। जैसे आपके सामने कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आए हैं, मान लो श्रील प्रभुपाद वापी में आए हैं या श्री प्रभुपाद के पत्नी जी श्रील गोपाल कृष्ण महाराज यहाँ पर आए हैं तो आप कितने आदरपूर्वक उनसे श्रवण करेंगे? नहीं। क्या यह संभावना है कि आप उनसे मिलते हैं और बोलते हैं स्वागतम और स्वागत करते आपको नींद आ जाए? आप अलर्ट रहेंगे। भगवान कृष्ण तो सब गुरुओं के गुरु हैं। भगवान कृष्ण के सामने प्रधानमंत्री भारत के या अमेरिका के प्रेसिडेंट ये सब चींटी के समान हैं। भगवान कितने महान हैं, नहीं? तो जब भगवान मेरे सामने आ रहे हैं नाम के रूप में तो मुझे कितना ध्यान रखना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। पुजारी जब जगन्नाथ जी की आरती करते हैं, अभी मैं आया तो 7 बजे आरती हो रही थी, तो पुजारी कितना ध्यान से करते हैं आरती, नहीं? ऐसे कभी देखा कोई पुजारी आरती करते करते उनको नींद आ गई? क्योंकि आप जानते जगन्नाथ, जब जब कर जानना चाहिए, ये भी भगवान की आरती है, ये भगवान की पूजा है। ये हरे कृष्ण मंत्र जो है भगवान का अवतार है, इसमें भगवान की सारी शक्तियाँ। तो कौन सा श्लोक है? महाप्रभु बोलते हैं कि आपके नाम में आपकी सारी शक्तियाँ हैं। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम् एतेषम् इह जनिना। माय डियर लॉर्ड, हे प्रिय मेरे प्रभु, आपके नाम में अनंत शक्ति है, आपकी सारी शक्ति है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कृपा, सारी दया नाम में है। भगवान का नाम और भगवान, इन दोनों में ज्यादा दयालु कौन है? नाम दयालु। हालांकि दोनों एक है, क्योंकि भगवान के विग्रह की पूजा करनी है तो आपको ब्राह्मण दीक्षा होनी चाहिए, ये कम से कम स्नान किया होना चाहिए। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र के लिए कोई नियम नहीं, एक ही नियम है कि ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, श्रद्धा के साथ, मैं कृष्ण के साथ हूँ। ये 2 घंटे मेरे और कृष्ण के बीच में एक प्राइवेट कन्वर्सेशन, मैं कृष्ण के साथ बातचीत कर रहा हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। बड़े से बड़ा VIP व्यक्ति भी आ जाए, बहुत सारे मिस्ड कॉल आ जाएं, ईमेल मैसेजेस आ जाएं, घर वाले कुछ कुछ बोले, तो भी जब के समय बस इतना, बस अब मुझे कृष्ण ही चाहिए। एकाग्र मन से पूरा ध्यान नाम में रहना चाहिए, बस हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, आई डू नॉट नो एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट द होली नेम। बस अपने महाभारत में कहानी सुनी है, अर्जुन और 5 पांडव, पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य थे, है ना, जो उनको धनुर्विद्या सिखाते। बाद में द्रोणाचार्य जो है परीक्षा लेते हैं पांडवों के कौरवों की, कौन श्रेष्ठ है, मालूम है कहानी? परीक्षा कैसे देते हैं? एक पक्षी, पक्षी नकली खिलौना पक्षी होता है, असली पक्षी नकली पक्षी होते हैं, उसके आंख में एक तीर चित्र। पहले दुर्योधन बोलता है मैं जाऊंगा, ये दुर्योधन बहुत नम्र होता है, आई एम फर्स्ट, त्रिनाथ अपनी सुनिश्चित का परफेक्ट उदाहरण। तो बोलते ठीक है आप निशान लगाते हैं, बोलते क्या दिख रहा है आपको? मेरे को पेड़ दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है, आप दिख रहे हैं। द्रोणाचार्य बोलते हैं टाइम पास मत करो, यू आर अ फेलियर। फिर सब आते हैं, सब फेल हो जाते हैं। और अर्जुन, अर्जुन से पूछते हैं वो क्या दिख रहा है, अर्जुन क्या बोलते हैं? उसमें पक्षी की आंख दिख रही है, पक्षी भी नहीं, पेड़ भी नहीं, सिर्फ आंख। ऐसे हरे कृष्ण मंत्र के समय वो क्या विचार आ रहे हैं? हरे कृष्ण मंत्र के विचार आ रहे हैं, कल रात के मिस्ड कॉल से याद आ रहे हैं, कल प्रसाद में स्वीट राइस उसकी याद आ रही है, परसों उसने मुझे गाली दिया था वो याद आ रहा है, आएंगे ये सब विचार, लेकिन डिलीट फाइल करते जाना, डिलीट डिलीट, बस एक ही विचार, इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि अभी अगर मृत्यु भी हो जाए मैं बस भगवान का नाम हूँ। जैसे परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज भागवतम सुनने के लिए बैठे, परीक्षित महाराज को शाप मिला, उनकी ज्यादा गलती नहीं थी। परीक्षित महाराज की क्या गलती थी? उन्होंने एक मरा हुआ सांप डाला, उसके लिए इतनी भयानक सजा नहीं होनी चाहिए, कोई जिंदा सांप डालो तो बात अलग है, नहीं मरा हुआ सांप डाला, इतनी बड़ी सजा। तो परीक्षित महाराज चाहते तो विरोध कर सकते थे, परीक्षित महाराज ने सोचा ये भगवान की कृपा है, जगन्नाथ जी मुझे भगवत धाम जल्दी बुला रहे हैं, मेरा REC टिकट कंफर्म हो गया, मुझे वापस भगवत धाम। तो नाम जप के समय, क्योंकि आप कहीं भी रहोगे ना, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो, वापी में रहो, बम्बई में रहो, या नेपाल में रहो, या भारत में रहो, समस्या आएंगी। ये दुनिया में कोई दो व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनका आपस में मतभेद नहीं हो, कोई दो व्यक्ति नहीं, कोई दो व्यक्ति नहीं। फिर दो, अगर आपको कोई दो व्यक्ति मिलते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, या भाई भाई हो, या दो ब्रह्मचारी हो, और कोई झगड़ा नहीं, कोई मतभेद नहीं है, तो एक ही जगह पे हो सकता है, और वो है श्मशान घाट में मरने के बाद, तब दोनों शांत हो जाएंगे। झगड़ा हो गई कहीं भी जाओ। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, पानी है? नहीं है, ग्लास नहीं, कोई बात नहीं, चाहिए नहीं, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। ये दो बटन प्रभुपाद बोलते हैं, देखिए समझो, एक ये है करताल, दूसरा है, ये दोनों दूर दूर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ये पास में है तो आवाज़ आती है, ये निर्जीव है, ये दोनों पास में है तो थोड़ा आवाज़ आता है, आप तो सजीव हो, है कि नहीं, आशा है नहीं? तो जैसे पास में है थोड़ा झगड़ा होगा, लेकिन हमें क्या याद रखना है, त्रिनाद अपी समीक्षा, जो भी कोई हमारे साथ बुराई करे और जो भी अच्छाई हम करें, वो दोनों भूल जाना चाहिए, तभी हम इस्कॉन में साथ में रह सकते हैं। जिसने भी किसी ने बुराई की ना, वो तुरंत भूल जाना चाहिए, और आपने जो अच्छाई की वो भूल जाना चाहिए। हमारा क्या होता है, उल्टा होता है कि हमने अच्छाई की, अरे मैंने इसको मेरा लैपटॉप दिया था, मैं भूखा रह के अपनी रोटी दी, वो याद रहते हैं, और उसने एक कड़वा शब्द बोला वो भी याद रहता है। अब मोबाइल में SMS डिलीट कर देते हैं, लेकिन जो हृदय में SMS होता है वो कभी नहीं भूलते। अगर आपको जब अच्छा करना है तो सहन करना सीखो, जो भी हो रहा है भगवान के द्वारा हो रहा है। आपके प्लेट में गुलाब जामुन आया, किसकी कृपा से आया? जगन्नाथ। आपका गुलाब जामुन दूसरे ने खा लिया, किसकी कृपा से हुआ? कोई फर्क ही नहीं। आपको 10,000 रुपये आज एक्स्ट्रा कमाई हो गई, जगन्नाथ की कृपा। आपके 10,000 किसी ने चुरा लिए, जगन्नाथ की कृपा। आपका जेब हल्का कर दिया। जगन्नाथ भगवान बहुत दयालु। अभी यहाँ आने से पहले मेरे को एक डेंटल प्रॉब्लम था, मेरा एक दांत बहुत खराब था, उसको निकालना था। जस्ट अभी 6:30, 7 बजे निकाला उसको। डॉक्टर ने बोला था कि आप ज़्यादा बोल नहीं पाओगे, लेकिन मैंने भगवान से प्रार्थना की और शास्त्र प्रभु की आज्ञा थी, तो मैं बोल रहा हूँ। जब डॉक्टर ने दांत निकाला, उसने एनेस्थेशिया दिया, इसलिए तो मुझे दर्द अभी नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद 9 बजे के बाद इसका दर्द शुरू होगा। जब उसने दांत निकाला तो उसने एनेस्थेशिया दवाई दिया था, इसलिए मुझे पता नहीं चला, दर्द नहीं हुआ। जब दांत देखा मैंने, निकला हुआ था, सब खून से भरा हुआ। और ये डॉक्टर ने दांत निकाला, उसको मैंने धन्यवाद दिया। मैंने पैसे नहीं दिए, मैं ब्रह्मचारी तो पैसे देते हैं लोग, 1,000 रुपये दांत निकालने के। तो आप सोचोगे कि ये क्या है, हम डॉक्टर को पैसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये जो गंदा दांत है, ये बाद में तकलीफ का कारण बनेगा, उसने निकाल दिया। ऐसे जब जगन्नाथ भगवान आपको तकलीफ देते हैं, समझिए कि हमारा सर्जरी हो रहा है। और वो सर्जरी जगन्नाथ किसके द्वारा करते हैं? दूसरे भक्तों के द्वारा। जब कोई कड़वा बोलता है, कोई आपको बिना कारण डांटता है, समझिए मेरी सर्जरी हो रही है, बिना एनेस्थीसिया की हो रही है। एनेस्थीसिया से होती है तो अच्छा है, लेकिन बिना एनेस्थीसिया तुम्हें सहन करना। ये भक्त मेरे को बुरा बोल रहा है, इसका मतलब ये मुझे त्रिनादपि सुनिश्चित बनने में मदद कर रहा है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे धन्यवाद देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को नम्र बनाने का प्रयास करें। मैं इसको डांट रहा हूँ जिससे शुद्ध बन जाए, वी शुड नॉट टेक दैट रोल, वी शुड टॉलरेट एंड कोऑपरेट। बस यही है इस्कॉन में आगे बढ़ने का तरीका। प्रभुपाद जी कहते थे, यू कैन शो योर लव फॉर मी बाय हाउ यू कोऑपरेट विद ईच अदर, कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर। इसीलिए ये सेंटर इतना सफल है वापी में, कि यहाँ पर आप सब मिलकर सेवा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है यहाँ पर। मैं यहाँ पर एक दो साल हो गए ना, एक साल एक साल पहले आया था तो इतने भक्त नहीं थे। शास्त्र प्रभु जी का परिवार बढ़ रहा है, ब्रह्मचारी रहते हुए परिवार बढ़ रहा है। ये अच्छा तरीका है बढ़ाने का। ज्यादा जिम्मेदारी भी नहीं। तो कॉपरेशन से हम आगे बढ़ेंगे। हम तो प्रभुपाद के परिवार के सदस्य हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक बार एक गुरु जी विश्राम कर रहे थे और दो शिष्य ब्रह्मचारी उनके पैर मसाज कर रहे थे, एक दाया पैर और एक बाया पैर। अच्छा, दोनों अच्छी सेवा कर, दोनों गुरु जी दोनों से खुश थे, लेकिन एक को क्या लगा, गुरु जी उससे ज्यादा खुश हो रहे। जब बाएं हाथ बाएं पैर मसाज कर रहा है, उसने क्या किया, मसाज करते करते दाएं साइड में पिंच किया। तो गुरु जी क्या लगेगा कि राइट वाला गड़बड़। उसके दाएं वाले ने क्या किया, लेफ्ट साइड में पिंच किया। तो दोनों आपस में झगड़ रहे हैं और बेचारे गुरु जी एक्सेसिव में। इसको हम समाज के आए, प्रभुपाद का शरीर है। बंबई, बंबई में भी तीन शाखाएं हैं, वापी, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, और केरला में इतने सेंटर हैं, और बेंगलोर और मायापुर और लंदन और न्यूयॉर्क और रशिया और अफ्रीका, 400 से ज़्यादा सेंटर हैं। ऐसे प्रभुपाद के अलग अलग अंग हैं। अगर किसी दूसरे अंग में कोई बीमारी होती है तो बाकी सब अंगों को मिल के सहायता करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आसान नहीं है, कोऑपरेट करना आसान नहीं, लेकिन इसी से हम भगवान का नाम ले पाएंगे। जब भी कोई हमारे बारे में बुरा बोले तो सोचना चाहिए कि ये मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, ये खाली एक दो पॉइंट बोल रहा है, अगर इसको मालूम होता ना तो 10 पॉइंट बोलता था। मेरा तो 10 GB फाइल है पापू, ये तो डाउनलोड किया नहीं है इसने पूरे जन्म में, मैंने क्या क्या किया किसको मालूम। अभी तो मैं भगवे कपड़े में हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, पूरे जन्म में पता नहीं मैं मृगरारी रहूँगा, मृगरारी शिकारी रहूँगा। ऐसे सोचना चाहिए अपने बारे में, और दूसरों के बारे में सिर्फ अच्छाई देखनी चाहिए। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को प्रोजेक्ट दिया गया, दुर्योधन को प्रोजेक्ट दिया गया, पूरे राज्य में ढूंढ के आओ, पता लगाओ कि आपसे अच्छा कोई व्यक्ति है क्या। और युधिष्ठिर को बोला गया, पता लगाओ कि आपसे बुरा कोई व्यक्ति है। दोनों ने सिंसियरली प्रयास किया और दोनों का आंसर था नहीं। युधिष्ठिर महाराज बोले, मैं पूरा जगह ढूंढा, मेरे से बुरा कोई नहीं, मैं सबसे पति। और दुर्योधन बड़े ईमानदारी से बोला, सब जगह ढूंढा, मेरे से अच्छा कोई नहीं। He was thinking like that, ऐसे नहीं, सच्चे भक्त को लगता है कि मैं सबसे पति। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं, मैं जगाई मदाई से अलग पति तू विश्राम पड़ी हुए के लिए। तो भावना हमारे अंदर कैसे आएगी, ये सिंसियर जप से आएगी। भगवान को देख के जप करो, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति या फोटो या प्रभुपाद या फिर गुरुदेव की फोटो, षड गोस्वामी को प्रार्थना करो, हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर के रो के प्रार्थना करो, वैष्णव ठाकुर मेरे पर दया करो, आप नामाचार्य हो, आप अगर दया करोगे तो मेरा जप अच्छा होगा। सिंसियरली प्रे, अगर अगर प्रसाद आपको बनाना है तो दाल चावल सब अपने रख दिया है, लेकिन अग्नि होनी चाहिए। अगर अग्नि नहीं है तो कुछ पकेगा नहीं। तो भक्ति में नम्रता जो अग्नि है जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगी। रूपा जी बोलते हैं 7th canto 9th chapter, अनलेस वन इज मीक एंड हम्बल टू मेक प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। जब तक कोई नम्र नहीं बनता तब तक उसको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। रोज सुबह उठ के गुरुदेव से प्रार्थना करो कि मेरे को नम्र बनाओ, मुझे शुद्ध बनाओ, मैं पतित हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, योग्यता विचार किछु नाही मोर, तुमार करुणा सार, करुणा न होइले कंडिया कंडिया, प्रण न रखी पिया, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, हरो दासी प्रणते कर। गुरुदेव मुझे तृणापे का अति ही न मतलब तृणादपि सुनिच्छे न बना तुम भगवान का नाम इस भावना से लेते तृणादपि तृणादपि सुनिच्छे अपने दिन में 100 बार ईश्वर तृणादपि सुनिच्छे न तरोरपि सहिष्णु न मान्य एक पॉइंट है नम्रता दूसरा पॉइंट है श्रद्धा श्रद्धा के लिए मैंने आपको पहले बताया नाम और नामी में अंतर नहीं उसका एक एग्जाम्पल है श्री गौर गोविंद महाराज बताते हैं एक बार एक महाराज जी प्रवचन कर रहे थे हरि नाम के ऊपर और बोल रहे थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे हरि नामे यानी अच्छे चैतन्य ने हरी का नाम लो हरी का नाम गौरंग और नित्यानंद लेकर आए हैं सब लोग बोलो हरी हरी बोलो हरी 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 देखते हैं कौन ज्यादा देर तक बोलता है एक तरफ 100-200 भक्त और एक तरफ मैं अकेला हरी 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 लास्ट पॉइंट मेरा हुआ एनीवे मैं अकेला हूँ आप इतने सारे हो लड़ाई बराबरी में होनी चाहिए मैं एक पॉइंट बता रहा था कि वो साधु महाराज बोले कि हरि का नाम लो हरि का नाम लेने से भवसागर पार हो जाए विशाल सागर है अरेबियन सी पैसिफिक ओशन से बड़ा है भवसागर सारे सागर मिलके भवसागर के बराबर नहीं बन सकते लेकिन भगवान का नाम लेने से ये भवसागर इतना बन जाता है जितना गाय के बछड़े के पैरों के खुर में जो पानी होता है उसको पार करने में कितनी कठिनाई समझो गाय का बछड़े का पैर है उधर थोड़ा कीचड़ है तो आप सोचो वो पार करें नहीं करें तो प्रवचन सुनने के बाद सब अपने अपने घर चले गए उसमें 2 माताएं भी थे एक सास और दूसरी बहू मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं सासू और सून गुजराती में क्या बोलते हैं सास बहू यस और सास और बहू के हर घर में बहुत सारी लीलाएं होती हैं ब्रह्मचारी सुनते हैं गृहस्थ एक्सपीरियंस करते हैं मैं अपराध नहीं करना चाहता लेकिन मैं सुनता हूँ ये ना और सब घर में होता है गुजरात महाराष्ट्र मैं पंजाब मेरे माता पिता पंजाब से हैं सब जगह पर होते हैं सहन करना और कोई उपाय नहीं उपाय नहीं तो दोनों घर जा रहे थे दोनों लेक्चर सुना और रास्ते में पानी भर गया था नदी में बाढ़ आ गई थी और बहू ने क्या सोचा अभी नदी पार करनी है कोई नौका नहीं स्विमिंग आता नहीं कैसे पार करेंगे उसको याद आया महाराज जी ने बोला था प्रवचन में क्या बोला था हरि का नाम लो उसने क्या किया पानी के ऊपर पैर रखना शुरू किया बिना नौका के बिना स्विमिंग के पैर रखा हरि 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 बस हरि का नाम लेके पार हो और उसकी सास नदी कैसे पार करूं रोने लग गई तो बोली आपने सुना नहीं वो महाराज जी ने बोला ना प्रवचन में बहू बोली आपने सुना नहीं बोले हाँ सुना लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर ऐसा कुछ नहीं हो पैर रखा तो नित्य गौर हरि बोल आई विल ड्राउन मैं डूब जाऊंगी तो दोनों ने सेम प्रवचन सेम व्यक्ति से सेम जगह पे सुना था फर्क क्या था विश्वास के बाद आपको जो श्रील प्रभुपाद और प्रभुपाद के प्रतिनिधि शास्त्र प्रभु और डिवोटी कमल लोचन प्रभु यहाँ दे रहे हैं सबसे अनमोल रत्न है हरे कृष्ण मंत्र वन नेम ऑफ गॉड कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू करोड़ ऑफ रुपीस एक तरफ करोड़ों रुपए हो और एक तरफ एक हरि नाम हो तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती हम पैसे का कितना ख्याल रखते हैं समझे आपके बैग से 10,000 रुपये चोरी हो गए तो आपको कितना दुख होगा कितना सोचोगे उसके बारे में पता लगा किसने लिया क्या लिया कहाँ गया लेकिन आप नाम में सो जाते आपको दुखी नहीं होता आप नाम जब कहते हैं आपको नींद आ जाती है वैसे नॉर्मल हो जाता है बहुत दुख होना चाहिए अगर मुझे नाम में नींद आ रही है अगर मुझे नाम में रुचि नहीं है, श्रद्धा। और तीसरा पॉइंट प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चैंट अटेंशन, पूरे ध्यान पूर्वक हर एक मोती पे नाम को सुनते हुए, कृष्ण कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव, हरे मतलब राधा रानी। अगर आप कृष्ण के पास डायरेक्टली जाओगे कृपा मांगने तो कृष्ण कृपा नहीं करेंगे। मानो देव हरि, क्या नाम आपका, देव हरि प्रभु, अगर भगवान के पास जाते हैं कृष्ण के पास, भगवान दया करो मेरे ऊपर, तो भगवान बोलेंगे कौन है देव हरि, इसका फाइल देखो, बाप रे 10 GB फाइल नहीं 10 तो मेरा था, आपका 20 होगा नहीं सबसे ज्यादा पतित मैं हूँ तो 5 होगा। तो इतना पाप भरा इसने पूरे जन्म में, अभी क्या हेड शेव कर दिया तो पाप तो नहीं जाने वाले अभी, इसको कृपा नहीं मिलेगी, भगवान बोलेंगे अभी बहुत जन्म लगेंगे। लेकिन देव हरि प्रभु बहुत होशियार हैं, वो कृष्ण के पास नहीं जाते, पहले राधा रानी के पास जाते, और राधा रानी पहले हरे कृष्णा बोलते हैं। तो राधा रानी कृष्ण को बोलती हैं कि देव हरि प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं, इनको स्वीकार कर लो। भगवान कृष्ण जगन्नाथ जानते हैं कि देव हरि प्रभु बदमाश हैं, सॉरी मुंह से निकल गया सत्य एग्जाम्पल जस्ट फॉर लेक्चर। तो कृष्ण जानते हैं कि देव हरि प्रभु, जो भी मैंने बोला आपने बोला मैंने नहीं बोला तो कृष्ण जानते हैं, लेकिन जब राधा रानी बोलती है तो कृष्ण मना नहीं कर सकते। मटेरियल वर्ल्ड में भी होते हैं कई बार, जो जनरली पुरुष अपने पत्नी के प्रेम के अधीन हो जाते हैं, लेकिन ये भौतिक एग्जाम्पल, लेकिन कृष्ण जो है राधा रानी के प्रेम के अधीन है, वो आध्यात्मिक उदाहरण। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वी शुड प्रे फॉर द मर्सी ऑफ राधा रानी। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने एक कविता लिखी, आपने पढ़ी है वो कविता, प्रभुपाद ने एक पोयम लिखा, आपने पढ़ा है, आपके वैष्णव सॉन्ग बुक में है वो पोयम, कौन सा भजन हो, कृष्ण तब पुण्य हो बे भा, पुण्य करिबे जबे राधा रानी खुशी हबे, ध्रुवती बोले तो माता। इसका मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग, हे मेरे भाई ये जान लो कि आपके ऊपर कृष्णा जब कृपा करेंगे जब राधा रानी खुश होंगे, राधा रानी को प्रसन्न कर। राधा रानी कैसे खुश होंगे, जब राधा रानी के प्रतिनिधि प्रभुपाद को प्रसन्न करेंगे, जब उनके प्रतिनिधियों को प्रसन्न करेंगे, इस भावना से भगवान को पुकारना चाहिए। आई नीड नाम जब जाए, एक रिचुअल नहीं होना चाहिए, बस पूरा करना है हरे कृष्ण ये कंपनी में कार्ड पंचिंग होता है, कार्ड पंच किया, अटेंटिव ध्यान से पुकारना। रूपा से शुड क्राई लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर, छोटा बच्चा माँ के लिए पुकारता है ना, छोटा बच्चा खाली ऊपर से पुकारता है आम तो माँ ध्यान नहीं दे, बच्चा अगर बहुत जोर जोर से पुकारता है माँ उसको खिलौना देती है खिलौना खेलने, लेकिन अगर बच्चा बोलता है नहीं मुझे माँ ही चाहिए तो फिर माँ उसको गोद में उठा ले, और हर माँ को पता चल जाता है कि बच्चा उसका रो रहा है। अगर 3-4 बच्चे हैं और उसका बच्चा रोता है तो माँ को पता चलता है नहीं, और माँ ये नहीं देखती कि कौन से राग में रो रहा है, भटिया राग है सरस्वती राग है। भगवान हमारे कीर्तन के ट्यून को नहीं देखते, हालांकि अच्छे ट्यून में गाना चाहिए अगर भगवान ने आवाज़ दी है, लेकिन चाहे कि आवाज़ कोयल की तरह हो या कौवे की तरह हो कृष्ण वो नहीं देखते, कृष्ण भाव कराए, कृष्ण देखते हैं कि आपके हृदय की कितनी आतुरता है, कृष्ण के लिए रोना सीखो तभी आपको कृष्ण मिलेंगे। खाली इस्कॉन में फिजिकली रहने से, तिलक लगाने से, कंठी माला करने से भगवान नहीं मिलेंगे, ये भी करना चाहिए, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन रियल फैक्ट है कि भगवान के लिए पुकारना चाहिए। और जगन्नाथ भगवान बहुत दया करते, गौर लीला में कहानी है गोपीनाथ पटनायक की, मैंने बताई थी यह कहानी, बताई भी होगी तो बहुत समय हो गया। गोपीनाथ पटनायक कौन है मालूम है आपको, 5 भाई थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में, एक का नाम था रामानंद राय, उनके भाई का नाम था गोपीनाथ पटनायक और एक भाई का नाम था वाणीनाथ राय और दो छोटे भाई थे इनका नाम था कला निधि और सुधा निधि। ये पांच भाई कौन है? पांच पांडव। इनके पिताजी का नाम था भवानंद राय जो कृष्ण लीला में कौन है? महाराज पांडव। गौर लीला और कृष्ण लीला क्या है? सेम व्यक्ति हैं, अलग अलग रोल खेल रहे हैं। कई बार एक ड्रामा पार्टी होती है, वो एक रोल खेलते हैं, फिर वो ड्रामा हो जाता है, दूसरा रोल खेलते हैं। ये पांच पांडव, ये पांच भाई बहुत सिंसियरली जगन्नाथपुरी में रह रहे थे और चैतन्य महाप्रभु उस समय संन्यास लेने के बाद कहाँ रहते हैं? चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी गंभीरा में। एक दिन अचानक कुछ भक्त दौड़ते हुए, महाप्रभु महाप्रभु क्या हुआ? आपके भक्त गोपीनाथ पटनायक का जीवन खतरे में। महाप्रभु ने पूछा, क्या क्या बात हुई, क्या बात हो गई? आपके भक्त गोपीनाथ पटनायक को जांगा पर फेंकने वाले, एक गोल सर्कल है तलवार का, नंगी तलवार, बहुत सारी तलवार ऐसे गोल घूम रहे हैं और जिसको मृत्यु दंड देना है उसको ऊपर से फेंक दिया जाता है, उसका शरीर थोड़ा मशीन से चौक। वहां पर पूछा, राजा ने यह सजा क्यों दी? उसने कोई गलती की होगी, बिना गलती के तो कभी कोई सजा नहीं दी जाती। उसने बताया कि एक्चुअली गलती की थी, गोपीनाथ पटनायक टैक्स कलेक्टर थे, उनका कार्य था कि उड़ीसा के सब इलाके से पैसे एकत्र करना और वो पैसे जमा करना राजा के पास, उसमें से कुछ परसेंट उसका कमीशन था। उन्होंने क्या किया, जो ऑफिशियल कमीशन था उसके अलावा 200,000 महाप्रसाद गोविंद ने डाइजेस्ट कर दिया एक्स्ट्रा। राजा के सेक्रेटरी ने अकाउंट चेक किया, देखा देखो इतना इतना कलेक्शन होना चाहिए, 200,000 का घपला है। तो राजा ने तुरंत उसको बुलाया, गोपीनाथ आपने इतने पैसे कलेक्ट किए और इतने पैसे जमा किए, दोनों के बीच में 200,000 का डिफरेंस दिख रहा है, व्हाट इज द मैटर, काय चल रहा है? तो उसने बताया कि एक्चुअली मेरे से गलती हो गई, मैं कुछ गलत मैंने गलती से खर्चा कर दिया, लेकिन अभी मैं पेमेंट कर दूंगा, ऐसे मेरे पास 10 घोड़े हैं, मेरे घोड़े आप रख लो, अरे घोड़े की जितनी कीमत हो वो आप 200,000 से उतना कम कर दो, समझो घोड़े की कीमत है उस समय 10,000, 10 घोड़े का 1,00,000 हो गया, तो 200,000 में से 1,00,000 आपको मिल गया, बाकी 1,00,000 मैं EMI दे दूंगा आपको इंस्टॉलमेंट ग्रेजुअली। तो राजा ने बोला ठीक है, अपने बेटे को बुलाया, बेटे तुम इनके साथ जाओ, इनके 10 घोड़े हैं, अरे घोड़े की कितनी कीमत होती है ये पता लगाओ। राजकुमार ने क्या किया, जानबूझ के घोड़े की कीमत कम लगाई, मानो 10,000 का घोड़ा है बोला 1,000 का है, अभी घोड़े पे कोई MRP तो नहीं होता जैसे जब मार्केट में होता है कि सेल वैल्यू तो होती नहीं, तो जो लगा दे। तो गोपीनाथ पटनायक को बहुत गुस्सा आ गया कि मेरे घोड़े इतने अच्छे घोड़े हैं और आप उनकी कीमत इतनी कम लगा रहे हो। तो उन्होंने एक गुस्से में आके एक बात बोल दी कि गोपीनाथ, ये जो राजा के जो बेटे थे उसकी एक गलत आदत थी, गलत आदत मतलब ऐसे आदत थी कि वो बात करते करते सिर्फ पीछे की तरफ मोड़ते थे, जैसे मान लो अगर प्रवचन दे रहे हैं तो बोलते थे ऐसा, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं कि सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन वो जो बोलते थे वैसे बोलते थे, कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं कि सब ऐसे कर। तो गोपीनाथ पटनायक उस पर टॉन्ट करते हैं, बोले मेरे घोड़े अच्छे हैं, वो तुम्हारी तरह गर्दन नहीं मोड़ते। अभी ये बड़ा इंसल्ट हो गया, मतलब इंडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि मेरे घोड़े तुम्हारे से ज़्यादा अच्छे हैं। अब मैं किसी को बोलूँ तू घोड़ा है, तू गधा है, तू माकड़ है। प्लीज़ कंटिन्यू अप टू 9:30, थैंक यू। बाकी जगह पे लोग बोलते जल्दी ख़त्म करो, लेकिन यहाँ शास्त्र को तो अभी मेरा एनेस्थेशिया का इफेक्ट चला गया, इसलिए मुझे बोलने में आसान हो रहा है। भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते। मैं जान लिया कि भगवान पे हमेशा निर्भर रहना चाहिए। आज मैं बोल रहा हूँ, अगले क्षण बोल सकूँगा कि नहीं वो जगन्नाथ की इच्छा नहीं। तो उसने बोला मेरे घोड़े अच्छे घोड़े हैं, वो आपकी तरह पीछे गर्दन नहीं करते। यानी मैं आपको बोलूँ कि तू घोड़े की तरह तो बहुत ख़राब लगेगा। गुरु नहीं, मेरे घोड़े तुम्हारे से अच्छे हैं, इसका मतलब तू घोड़े से भी गया गुजरा। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में आके राजा के बेटे ने जाके देखा। अभी राजा के जो बेटे होते हैं ना, क्षत्रिय होते हैं, अपमान नहीं सहन कर सकते, चाहे भक्त भी हो। वो भी डिवोटी था, राजा प्रताप रुद्र भी डिवोटी था, उसका बेटा भी डिवोटी था और गोपीनाथ पटनायक भी डिवोटी था, लेकिन डिवोटीज में थोड़ा झगड़ा हो गया। ये सब समय होता, 500 साल पहले भी होता था, अभी हुआ तो आश्चर्य की बात नहीं, होता रहता। तो उन्होंने क्या किया, राजा को फॉल्स रिपोर्ट दे दिया, राजा को गलत समाचार दिया। क्या समाचार दिया, गोपीनाथ पटनायक जो पैसे वसूल करने थे वो नहीं दे रहा, आप बताओ क्या किया जाए, अगर आप आज्ञा दें तो इसको चांगा पर फेंक दिया जाए, मृत्युदंड दे दिया जाए। राजा ने सोच के जवाब दिया, मुझे पैसे चाहिए, जो भी हो आई वॉन्ट द मनी बैक, मुझे पैसे वसूल करने। तो इसका अर्थ क्या निकाला उसने, कि राजा ने बोला कि चांगा पर फेंक दो। ये बैकग्राउंड है और सब महाप्रभु के पास है, आपके भक्त हैं, इतने साल उन्होंने आपकी सेवा की, अब उनका जीवन खतरे में है, आप मदद करो। महाप्रभु बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, गोपीनाथ पटनायक की गलती है, उसने पैसे गलत खर्च किए, मैं कुछ नहीं कर सकता। हरे कृष्ण जप करना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक और देखते हैं, महाप्रभु महाप्रभु क्या हुआ, गोपीनाथ पटनायक को चांगा के पास अभी फेंकने वाले हैं, उसने इतनी साल आपकी सेवा की है, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो, क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि जिस व्यक्ति ने आप इतने साल सेवा की उसकी आप मदद करो, आप इतने कैसे शांत रह सकते हो, उदासीन रह सकते हो। महाप्रभु बोले मैं सन्यासी हूँ, मैं फाइनेंशियल मैटर में कुछ नहीं बोलता, और आप क्या चाहते हो, गोपीनाथ की मदद करने के लिए मैं अपनी चादर लेकर राजा के पास जाके भीख मांगूं 2 लाख? हाँ मैं सन्यासी, मुझे भीख मांगने का अधिकार है। लेकिन कितना भीख मांग सकता है सन्यासी, जितना पैसा उसको एक बार के भोजन के लिए चाहिए। जगन्नाथपुरी में सिस्टम था कि जब कोई सन्यासी जाता तो उसको या तो लोग प्रसाद देते, प्रसाद नहीं देते तो पैसे देते, और उतने पैसे देते जितना एक समय के भोजन के लिए। तो मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे 100 रुपये दे दो जगन्नाथ प्रसाद के लिए, ठीक है कोई बात। लेकिन बोले मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे 2 लाख चाहिए भोजन के लिए। बाप रे, तो फुटफॉल लाइफ प्रोग्राम हो जाएगा, संडे फीस्ट के भी इतना नहीं होता होगा। नहीं तो चेतना बोले मैं नहीं कुछ मदद कर सकता। इतने में और टिवोटी थे, महाप्रभु महाप्रभु गोपीनाथ का जीवन खतरे में है, आप ये आपके सेवक हैं। महाप्रभु बोले आप मेरे पास क्यों आ रहे हो, ये जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ के पास जाओ, वो कुछ भी कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान जो चाहे कर सकते हैं, जो किया वो उसका उल्टा भी कर सकते हैं, जाओ जगन्नाथ। सब डिवोटी दौड़ते हुए जगन्नाथ के पास गए, त्राई माम रक्ष माम, ये जगन्नाथ भगवान मदद करो मदद करो। और इतने में क्या हुआ, राजा के एक सेक्रेटरी थे जिसका नाम था हरिचंदन, हरिचंदन गोपीनाथ पटनायक को मदद करना चाहता, और राजा के सेक्रेटरी होने के कारण उनका अंदर से कांटेक्ट था मंत्रालय से। तो वो राजा के पास गए और बोले महाराज ये आपके राज्य में क्या हो रहा है, गोपीनाथ पटनायक ने इतने साल आपकी सेवा की और 2 लाख का उसने घपला किया, उसके लिए मृत्यु दंड दे रहे हैं, वो तो आपको घोड़े देने को तैयार है, और बाकी बचा वो पैसा वो कुछ साल दो साल में दे देगा, और अगर आप उसको आज मृत्यु दंड दोगे तो वो भी नहीं रहेगा, आपको घोड़े भी नहीं मिलेंगे और वो 2 लाख भी नहीं मिलेगा। क्या फायदा उसको मृत्यु दंड देने में? राजा तुरंत बोले, मृत्यु दंड मैंने कभी नहीं बोला मृत्यु दंड देने के लिए, मैंने सिर्फ बोला कि पैसे वसूल करने के लिए जो आवश्यक हो वो करो, जाओ रोक दो, तुरंत रोक दो उसको। तुरंत हरिचंदन दौड़ते हुए गए, फेंकने वाले थे, स्टे ऑर्डर आ गया कोर्ट से राजा प्रताप रुद्र से, रोक दो रोक दो। और फिर गोपीनाथ पटनायक को राजा ने बुलाया अपने कमरे में और बोला, गोपीनाथ आपने 2 लाख का जो हिसाब में गड़बड़ दिख रहा है वो कैसे पेमेंट करोगे? गोपीनाथ बोले, मैंने पहले ही बताया मेरे पास 10 घोड़े हैं और बाकी बचा वो मैं दे दूंगा, लेकिन आपके बेटे मुझे मृत्यु दंड देना चाहते तो मैं क्या कर सकता। फिर भक्त दौड़ते हैं, महाप्रभु महाप्रभु क्या हुआ? शुभ समाचार, क्या हो गया? गोपीनाथ पटनायक का जीवन बच गया। और चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा, जब गोपीनाथ को चांगा पर फेंका जा रहा था तब वो क्या कर रहा था? सारे भक्त बोले, जब उसको चांगा पर फेंका जा रहा था तब वो जीप से बोल रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दिस इज द पावर ऑफ द नेम ऑफ गॉड। भगवान के जो नाम है, भगवान के जो नाम का जो प्रभाव है, कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान का नाम ही रक्षा कर सकता। हम देखते हैं कि महाभारत में जब दुर्वासा मुनि आए, ये कहानी सबको अच्छी लगती है सुनने को, है ना? दुर्वासा मुनि एक बार आए जब 5 पांडव जंगल में थे और द्रौपदी के पास एक क्या बोलते हैं इसका अक्षय पात्र, हर सेंटर में एक होना चाहिए ऐसा अक्षय पात्र, प्रसाद हम प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हम प्रोग्राम में 10 लाख लोगों को बुला सकते हैं। तो दुर्वासा मुनि अचानक आ गए और दुर्योधन ने जानबूझ के बोला, किस समय आना? जब द्रौपदी ने प्रसाद ले लिया हो, क्योंकि अक्षय पात्र का एक नियम था कि एक बार जब द्रौपदी प्रसाद ले लेती थी उसके बाद कोई नहीं ले सकता। उसने क्या किया, जब वो जानबूझ के उस समय आए जब द्रौपदी ने प्रसाद ले लिया, तब उस समय द्रौपदी घबरा के कि अभी क्या होगा। और दुर्वासा मुनि आप जानते हैं बहुत जल्दी खुश होते हैं और बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। तो द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज ने स्वागत किया, महाराज जी आपका स्वागत है, आप प्रसाद लेंगे? तो मुस्कुरा कर बोले, इसीलिए तो हम आए हैं। तो अब जानते हैं आगे की कहानी। द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज ने उनको बोला कि आप स्नान करने के लिए जाइए, वो स्नान करने गए। और जब वो लौटने से पहले द्रौपदी घबरा कर जोर से पुकारने लगी, कृष्ण कृष्ण
कृष्ण।
मान लो आपके घर में दुर्वासा मुनि आ गए तो कैसे आप पुकारोगे? नहीं, जोर से पुकारिए, कृष्ण कृष्ण
कृष्ण
कृष्ण
हरि
हरि हरि हरि। तो द्रौपदी के पुकारने से कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए और कृष्ण ने आते ही पूछा, द्रौपदी मुझे भूख लगी है, कुछ प्रसाद है? द्रौपदी बोले कि कुछ नहीं है, इसलिए आपको बुलाया, अभी आप भी मांग रहे। तो भगवान कृष्ण बोले कि कुछ तो होगा, और क्या था, एक शाक एक चावल का एक दाना था और भगवान कृष्ण को दिया। भगवान कृष्ण ने दिया तो टोटल सेटिस्फाइड, यस्मिन तुष्ट जगत। भगवान कृष्ण संतुष्ट हो गए। इधर दुर्वासा मुनि एंड कंपनी, उनका छोटा सा ग्रुप था 10,000 ना, 10,000, और सबका सबका पेट फूल गया एक साथ, सब घबरा गए। यमुना जी में स्नान करते करते तब उस समय भगवान कृष्ण भीमसेन को बोले ना, भीमसेन को बोले यस जाओ भीमसेन जाओ बुला कर ले आओ, प्रसाद इज रेडी, प्रसाद तैयार। तो भीमसेन बोले भगवान प्रसाद तैयार नहीं है, दुर्वासा मुनि आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। भगवान बोले नहीं, आप मेरे पर भरोसा करो। और हाँ, जाते समय अपनी गदा को साथ लेकर जाना। महाभारत में हम देखते हैं भीमसेन की वो गदा थी जिससे उन्होंने 100 गधों को मारा था, बड़ा दुर्योधन दुशासन स्पेशल मर्सी। आपको मालूम है 5 पांडव में से किसी ने दुर्योधन को नहीं मारा और 100 भाइयों को नहीं मारा। दिस वॉज स्पेशल मर्सी ऑफ भीमसेन प्रभु। भीमसेन गए गदा लेकर, प्रसाद इज रेडी, आपका भी रेडी है लेकिन बस मुझे 10 मिनट और बोलना। दुर्वासा मुनि और सब डिवोटी सब उनके फॉलोअर्स सोचने लगे, हम जाएंगे प्रसाद नहीं खाएंगे तो बड़ा खराब लगेगा। नहीं, 10,000 के लिए बनाया, 5,000 आ गए कोई बात नहीं, लेकिन कोई नहीं आया तो कैसा लगेगा। तो बोले हम अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, आप चलो। तो भीमसेन चले इधर, दुर्वासा मुनि यू टर्न लेकर निकल गए। तो कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ, ये हंसने की भी कहानी, इसका गहरा अर्थ है कि ऐसे भगवान को पुकारना चाहिए। और एक कहानी गजेंद्र की, गजेंद्र हाथी की कहानी आपको मालूम है। गजेंद्र अपने परिवार के साथ था, खेल रहा था, आनंद से था, शायद संडे का दिन था और खुशी से था, और अचानक उसको पानी में मगरमच्छ ने पकड़ लिया। गजेंद्र लड़ता रहा, ये कहानी भागवत में बताई गई सत्युग की है कि कई वर्षों तक लड़ाई चलती रही। मगरमच्छ उसको अंदर खींच रहा था, गजेंद्र बाहर आ रहे थे बहुत देर तक। अंत में उसने जान लिया, श्री कृष्णम शरणम श्री विष्णु, भगवान विष्णु को याद किया। पूरे जन्म में वो एक महान राजा थे जिसका नाम था इंद्रद्युम्न। ये दूसरे इंद्रद्युम्न, एक इंद्रद्युम्न जगन्नाथ मंदिर बनवा, ये अलग इंद्रद्युम्न। और उनको याद था, वो प्रार्थना याद थी। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसलिए हमें प्रार्थना याद करनी चाहिए, गोविंद मादे पुरुषम नमस्ते नरसिंहाय उग्रम वीरम महाविष्णु, या पुरुष शुक्त प्रेयर, कुंती महारानी की प्रेयर, उपदर्शंतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, ध्रुव महाराज की प्रेयर, ब्रह्मा जी की प्रेयर्स, प्रहलाद की प्रेयर्स। रूपा जी बोलते हैं कि इसलिए याद करने चाहिए कि हो सकता है कि हम इस जन्म में भगवत धाम नहीं गए तो भी अगले जन्म में वो प्रेयर्स याद रहेंगे। ये शरीर है, ये एक हैंडसेट की तरह है, और हमारी आत्मा जो है वो सिम कार्ड की तरह है। तो कभी कभी हो सकता है कि हैंडसेट खराब हो जाए, वो सिम कार्ड आप दूसरे मोबाइल में डाल सकते हैं। तो हमारे समझो शरीर अंत हो गया, मृत्यु हो गई, तो वो आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी और जो डेटा स्टोर किया है वो अगले शरीर में मिलता है हमें। जो भी आपने प्रार्थना की है, जपा की है, आपने वैष्णव सेवा की है, मंदिर में जगन्नाथ के लिए पुस्तक वितरण किया है, सब आपके अकाउंट में रहेगा। और जो भी आपने बिजनेस किया, घर बनाया, वो सब यहीं पर रह जाएगा। मृत्यु के बाद कितना परसेंट हम साथ में अपना ATM कार्ड ले जा सकते हैं? नहीं, 10%। सिर्फ एक ही ATM है, ऑल टाइम महामंत्र, ये रियल ATM। तो महामंत्र को गंभीरता से लीजिए। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, व्हेन यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा यू शुड थिंक दैट यू आर इनवाइटिंग कृष्णा टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ योर हार्ट। इसका हिंदी में अनुवाद है, जब आप हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं तो सोचना चाहिए कि कृष्ण को मैं अपने हृदय के सिंहासन पर बिठा रहा हूँ। तो बड़े ध्यान से मणिमन गोल्डन सिंहासन, राधा गोपीनाथ, राधा गिरिधारी, राधा श्याम सुंदर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। पिछले हफ्ते मैं जगन्नाथ पुरी में था, और पिछले रविवार रथ यात्रा थी, उसके एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन, तो गुंडीचा मार्जन कुछ इस्कॉन के भक्त कर रहे थे, मैं भी साथ में था, तो उत्साह से कर रहे थे सब, और एक भक्त पढ़ के सुना रहे थे। प्रभुपाद जी बताते हैं गुंडीचा मार्जन मीन्स क्लिंजिंग द हार्ट, हृदय को पवित्र बनाना। तो कल यहाँ पर जगन्नाथ आने वाले हैं, इसलिए मंदिर की धुलाई की जा रही है, सफाई की जा रही है। ऐसे अगर हम चाहते हैं कि भगवान जगन्नाथ हमारे हृदय में लीला करें, उसकी सफाई करनी चाहिए। सफाई के दो भाग है, श्रवणम दूसरा है कीर्तन, कथा सुनना और नाम लेना, ये हमारे भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण भाग। हम हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करना चाहते, हम पूरा दिन जप करने की हमें आज्ञा नहीं है, कम से कम 16 माला ध्यान पूर्वक जप करें, उसके बाद फिर अगर समय मिलता है और कोई सेवा नहीं है तो और भी जप करें, ध्यान पूर्वक करें, और हर एक मोती पे भगवान जगन्नाथ से, गौर नीता राधा गिरिधारी से प्रार्थना करें, मुझे शुद्ध भक्ति दो, और कुछ मांगना नहीं, जो चाहिए भगवान अपने आप दे देते हैं। मैं जगन्नाथ की लीला बताऊंगा, यहाँ पर आपको कहानी बताई है उसकी, बंधु महंती ने बताई थी लास्ट वीक, कितने भक्तों को मालूम है ये कहानी, आपको तो मालूम है ना, आप बताएंगे कितने भक्तों को नहीं मालूम है कहानी, अरे मेजोरिटी को नहीं मालूम है, या शायद आपको मालूम होगी, आप फिर से सुनना चाहते हो, ये बहुत अच्छी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे भगवान जगन्नाथ बहुत दयालु है। बंधु महंती एक बहुत गरीब परिवार से थे, उड़ीसा में एक जगह, इसका नाम है जाजपुर, आप में से कोई भक्त उड़ीसा से हैं, यहाँ पर आप उड़ीसा से हैं, जय इसलिए आप जगन्नाथ के प्रभुपाद जी बोलते हैं, उड़ीसा और बंगाल में जो व्यक्ति जन्म लिया बहुत भाग्यशाली, उड़िया और गौड़िया दो और दोनों को एक चीज़ है, चावल खाना बहुत पसंद है। मैं एक बार पहली बार जब मैं इसको ये जगन्नाथपुरी में गया था, मेरे साइड में एक डिवोटी थे उड़ीसा के, वो चावल डाला इतना, और मैं देखा कि बाजू में जो उड़िया भक्त थे गोवर्धन नहीं, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, मैं अब भगवान को कैपेसिटी देते हैं डाइजेशन का भी, बहुत पावरफुल है और नाइस। चेतना में भी चावल ज़्यादा खाते, चेतना में रोटी वगैरह खाते थे, ऐसे पढ़ा नहीं हमने कभी, तो इसलिए परंपरा में। तो बंधु महंती इतने गरीब थे, उनके दो बच्चे थे, उनके पत्नी बच्चे, वो दो बार खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इतने गरीब थे। कई भगवान भक्तों को गरीब बनाते हैं। एक बार ड्यूटी मुझे बोल रहे थे, प्रभु जी आपने बोला जब ज़्यादा करना, मैंने जब बढ़ाया अभी 12 से 16 किया, और उसके बाद सुबह करने लगा तो प्रॉब्लम्स और बढ़ गए, ये जब ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। और एक्चुअली फैक्ट है, अगर आप कृष्ण की भक्ति करोगे ना तो प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे आप अगर घी बनाना चाहते हैं मक्खन से, है ना, तो बहुत सारी गंदगी पहले आती है, अगर आप गटर में सफाई करने जाओगे तो पहले बहुत गंदगी निकलेगी, और सफाई नहीं किया तो ऊपर से लगेगा वाह फर्स्ट क्लास पानी चल रहा है, लेकिन अंदर गंदगी है। तो भगवान भक्तों को कष्ट ज़्यादा देते हैं, भगवान सोचते हैं ये मेरा भक्त है, इसके बहुत पाप है, अगर थोड़ा थोड़ा कष्ट दिया तो 4 जन्म लगेंगे, ज़्यादा कष्ट दिया तो 1 जन्म में अकाउंट सेटल हो जाएगा। आपको डॉक्टर बोलते हैं कि मैं आपको सिरप दूंगा, मीठा मीठा गोली दूंगा, आपको 10 दिन लगेंगे ठीक होने में, आपको इंजेक्शन दूंगा, आप 1 दिन में ठीक हो जाएंगे, आप बोलेंगे ठीक है इंजेक्शन थोड़ा दर्द होगा लेकिन ठीक तो हो जाएंगे। तो भगवान भक्तों को हमेशा ज़्यादा कष्ट देते हैं। शिव जी के भक्त बनोगे तो खूब माला माल अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कृष्ण भक्त बनोगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा, लेकिन एंड में भगवान की प्राप्ति होगी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बंधु के घर वालों ने पत्नी को, आपका कोई मित्र नहीं है, आपका कोई भाई सगा संबंधी और क्या बोलते हैं उसको रिश्तेदार, हाँ मेरा एक मित्र है, कौन है, इसका नाम है जगन्नाथ, वो कहाँ रहते हैं, पुरी में, चलो उनके पास जाते हैं, वो हेल्प मांग लेंगे, और मेरे ख्याल से कितना 150 किलोमीटर होगा पुरी से जाते हैं, 200 किलोमीटर, अभी उड़ीसा से हैं 200 किलोमीटर, और पैदल निकल पड़े, अभी हम तो ट्रेन में जाते हैं फिर भी देखते हैं कंफर्म सीट है कि नहीं है, एसी में है, तो पैदल निकल पड़े। जगन्नाथपुरी जाना भी बहुत सौभाग्य के लोगों को ही मिलता है, जगन्नाथपुरी का बताया गया वहाँ जो भी व्यक्ति रहता है उसके 4 हाथ होते हैं, रिक्शा वाला हो, पान वाला हो, पक्षी हो, सब चतुर्भुज होते हैं। आपको नहीं दिखाई पड़ रहा लेकिन शास्त्रों में लिखे हैं, ऐसा है ना। और वहाँ जाके कोई लेट जाता है उसको दंडवत का फल मिलता है, और जो सो जाता है उसको समाधि में जाने का फल मिलता है। लेक्चर में नहीं, बाकी समय। जगन्नाथपुरी में अगर आप मछली भी खाते हो तो हविष्यान प्रसाद खाने का फल मिलता है, लेकिन हम वो करते नहीं हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि भगवान का धाम है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में करीब करीब 18 वर्ष रहे। एक छोटा सा कमरा है उसको गंभीरा बोलते हैं, महाप्रभु वहां पर रहे। इधर जाजपुर से निकलकर वो पहुंचे शाम के समय, उनको मंदिर में भी अलाउड नहीं था, किसी कारणवश बाहर ही बैठे थे। तो बच्चे रोने लगे, पापा ये तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, दरवाज़ा बंद है, उनको अंदर नहीं बुला रहे। तो बोले नहीं, आज मेरे दोस्त के बहुत सारे गेस्ट आए हुए अतिथि, कल बुलाएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। रात को वो सो गए, अब भगवान जगन्नाथ स्वयं उठ गए, अपने सोने की थाली ली और सब प्रकार का प्रसाद लिया, चावल। एक्चुअली मुझे याद दिलाना, मैं भी जगन्नाथ का प्रसाद लाया हूँ, तो सर्विंग के समय सबको देना है। या ऑलरेडी भक्तों ने दिया ही होगा आपको, नहीं दिया? जगन्नाथ का प्रसाद बहुत पावरफुल है। इसकी प्रसाद की एक कहानी बता के फिर मैं लेक्चर एंड करूँगा। तो यहाँ क्या हुआ कि भगवान जगन्नाथ स्वयं की थाली लिए, सोने की थाली, उसमें चावल, दाल और क्या होता है पूरी में, खाजा, यस खाजा, खाजा और क्या होता है आपका फेवरेट, हाँ मालपुआ, यस। कहाँ पर मिलता है ये सब? आनंद बाजार, यस। सबको बाकी जगह भूल जाते लेकिन आनंद बाजार याद रहे। मैं एक बार लेक्चर में डिवोटी को बोल रहा था, हम लोग वृंदावन में वो बेल वन गए थे, आपको याद है? बोले कौन सा, वहाँ लेक्चर बताओ, नहीं बोले जहाँ पे परोठा खाया था, हाँ याद आ गया। क्योंकि डिवोटीज को याद उससे रहते हैं ना। इतना बड़ा अच्छा प्लेट बना के भगवान स्वयं आए, बोले बंधु महंती उठो, उठ गए। बोले क्या है ये, मैं आपके लिए प्रसाद लाया। बोले आप कौन? बोले मैं जगन्नाथ। आश्चर्य हो नहीं, समझे आपके घर में भगवान आते हैं। बोले हरी बोल उठो, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। प्रभु उठो, आप कौन हो? मैं जगन्नाथ। मेरे को लगा तो आप तो ऑल्टर से निकलते नहीं हो, यहाँ कैसे आ गए? ऐसा मत सोचे, भगवान जगन्नाथ हिलते भी हैं, चलते हैं। मैं भी यहाँ से तलासरी से आ रहा था, मुझे रास्ता मालूम नहीं था, और मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था। मैं ढूंढते ढूंढते आया और अचानक कार का लेफ्ट टर्न लिया और देखा वो यही नगर, क्या भाग्य। मैंने पूछा नहीं था प्रभु से एड्रेस, और वहीं पे वो कार रुकी, और दाऊ जी प्रभु वहीं पे आए मेरे को। कैसे हो गया पता नहीं, ये जगन्नाथ पावरफुल है। ऐसा मत सोचो यहाँ पे अंदर खाली कोई मूर्ति की पूजा होगी, ये जगन्नाथ है, बहुत पावरफुल है। थप्पड़ भी मारते हैं रात को, भक्तों को भी मारते हैं। भगवान को अच्छा प्रसाद दिया, बोला खाओ, और ये प्रसाद आप ले लो और प्लेट भी रख दो, सोने की प्लेट। प्रसाद खा लिया, खा के प्लेट रख दी बैग में और सो गए। और सुबह उठे तो एक प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम क्या था? प्लेट गायब। सब पुजारी ढूंढने लगे, बोले हाँ कल एक गरीब व्यक्ति यहाँ सोया तो उसका बैग चेक करना चाहिए। उन्होंने बैग चेक किया तो पकड़े गए, तुरंत उसको अंदर ले गए। तो बोला एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया, राजा को बताया, पुजारियों को बताया, भगवान जगन्नाथ स्वयं है। हाँ भगवान जगन्नाथ, हम 20 साल से ऑफरिंग कर रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं। तो चलो उसको जेल में डाल दिया। भगवान स्वयं सपने में आए, राजा के साक्षात आए। बोले हे राजन उठो, राजा उठ गया। बोले मैं जगन्नाथ हूँ, पूरी मेरा मेरी राजधानी है, ये मेरी राजधानी है और तुम मेरे सेवक हो। मैंने अपनी प्लेट ली, अपना प्रसाद लेके अपने भक्त को दिया, तेरे बाप का कुछ नहीं है। और तुम मेरे भक्त को कष्ट देते हो, जाओ उसके चरणों में गिर के माफी मांगो। और बेचारा राजा थर थर कांपते हुए गया, तो उसने माफी मांगी। एक्चुअली बोलते हैं कि बंधु महंती का एक ये भी है ना निवास है मंदिर के पास, इसलिए आप ओडिशा से, आप मुझे जगन्नाथपुरी के पास पास सब स्थान, जाजपुर, भद्रक, खिरचोर, और एक जगह है जाजपुर में आदि बराहा मंदिर है ना, आपने देखा सर? उड़ीसा को क्या आपने देखा नहीं? मैं दो बार गया हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा भक्त हूँ इसलिए मेरे को कृपा नहीं मिलेगी वही सोचना चाहिए कि मैं ज़्यादा पतित हूँ इसलिए भगवान मुझे ले गए, और शास्त्र प्रभु ज़्यादा एडवांस लिए इसलिए उनको भगवान के जाने की जरूरत ही नहीं है ऐसे कभी अपने आप को अच्छा नहीं मानना चाहिए। मैं लास्ट कहानी कहूँगा, सिर्फ दो मिनट बचे हैं, चार मिनट मैं शॉर्ट में बोलूँगा। एक बार एक मार्केट में, जगन्नाथपुरी में कौन सा भाग है जहाँ पर प्रसाद बिक्री होता है? आनंद बाजार में एक व्यक्ति मार्केट में बेच रहा होता है प्रसाद पंडा, और एक बहुत अमीर व्यक्ति आता है, बहुत अच्छे कपड़े पहने, सिल्क का पगड़ी बांधे हुए, और बोलते मुझे प्रसाद चाहिए, दाल चावल खीर, और 200 रुपये का प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद उसको दिया जाता है, पेमेंट कुछ नहीं, ऐसे ही भाग जाता है, प्रसाद लेके भाग जाता है, और पंडा बहुत गुस्सा होता है, पकड़ो पकड़ो उसको। जानते जगन्नाथ के पंडा भगवान जगन्नाथ से भी प्रेम करते हैं और पैसे से भी, जरूरत है उनको। पीछे पीछे गए, भागा भागा बोलते पीछे पीछे गए, अभी पकड़ा फिर अब आगे भाग गए, ध्यान से देखने कौन है इतना तेज भाग रहा है, तो देखा तो उसके पैर जो है जमीन से 2 फीट ऊपर चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर की तरह है ना, आप समझ गए इसका मतलब, वो कौन हो गया? देवता। जनरली देवता जो है वो जमीन को स्पर्श नहीं करते, कल से आप मार्केट में देखते रहना ये ना आपके स्कूल में कॉलेज में पता नहीं है। एक्चुअली जगन्नाथपुरी में देवता आते हैं, जो प्रसाद है ना देवताओं को भी नहीं मिलता। तो उसने बोला आप कौन हो? अब उसने बोला मेरा नाम है इंद्र, मैं स्वर्ग का राजा हूँ। तो बड़ा शौक लगा, नहीं आपको कोई ये ना कोई मिला कोई व्यक्ति कोई, और बोले तुम कौन हो? उसने बताया कि मैं नरेंद्र मोदी हूँ, या आप तो पहचान लेंगे, या मैं ओबामा हूँ। तो इतने खुश हो गए, मैं इंद्र से मिला, बोले जाओ ले जाओ कोई बात नहीं, आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी ये ना इंद्र के नोट यहाँ तो नहीं चलते रिजर्व बैंक में, तो उन्होंने बोला जाओ, लेकिन आप एक मुझे वरदान दो, मैं सबको बताना चाहता हूँ मैं इंद्र से मिला था। नहीं कितनी खुशी होती है बोलने को, नहीं इंद्र से, जैसे मैं प्रभुपाद को मिला था, बहुत कम जो प्रभुपाद के शिष्यों को छोड़ के बहुत कम लोग हैं जो प्रभुपाद से मिले, बहुत छोटा था, और श्री गोपाल कृष्ण महाराज उस समय जुहू में रहते थे, और वो मुझे अपनी कार में लेकर गए थे, प्रभुपाद का पंडाल प्रोग्राम था, तो मुझे अभी भी याद रहता है तो मैं प्रभुपाद से मिला था, तो मैं बताने में खुशी होती है, गर्व होता है, थोड़ा प्रेस्टीज बढ़ जाता है ना, इसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन अपना प्रेस्टीज के लिए। तो उसने बोला आप मुझे वरदान दो कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इंद्र से मिला था, इसलिए आप मुझे वरदान दो कि जहाँ मैं जाऊँ मैं प्रार्थना करूँ तो बरसात हो जाए। बोला ठीक है तथास्तु, और इंद्र उधर से ऊपर चले गए, और जहाँ से इंद्र ऊपर की ओर गए स्वर्ग की ओर, वह जगह का नाम हो गया स्वर्ग। आपने सुनी हुई ये कहानी? हाँ स्वर्ग द्वार, और फिर वापस लौट गए। सर पंडे ने पूछा कौन था वो व्यक्ति? बोले इंद्र। बोले ए इंद्र आप हमको गलत बोल रहे हो। बोले नहीं सही में। बोले क्या प्रूफ क्या है? बोले देखो अभी बरसात होती है, बरसात होने लगी मार्केट में। तो थोड़ी सी कुछ कहानियाँ हैं, हमें जानना चाहिए जगन्नाथ भगवान बहुत दयालु है, सबसे बड़ी दया जगन्नाथ की हरे कृष्ण मंत्र में। मैंने जो भी चीज़ें बताई या प्रयास करी कि जब के पहले गुरुदेव श्रील प्रभुपाद सब आचार्यों को याद करिए, गौर निताई को प्रार्थना करिए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं हर एक मोती पे चैतन्य महाप्रभु को याद करिए, स्पेशली पंचतत्व मंत्र बोलने पे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास गौर भक्त, और उसके बाद फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। धन्यवाद। 5 मिनट कीर्तन कर सकते हैं, बैठ कर ही अच्छा, इस भावना से कीर्तन करिए कि आप गजेंद्र हो, आपको माया ने पकड़ रखा है। ये हम कहानी को सुनते हैं ना सोचते हैं गजेंद्र कोई और है, नहीं हम खुद गजेंद्र हैं और माया ने हमें पकड़ के रखा है। ऐसे प्रार्थना करो आप द्रौपदी की तरह हो, द्रौपदी जब कौरवों की सभा में बेइज्जती हो रही थी उसने पुकारा हे कृष्णा हे गोविंद। या द्रौपदी जब दुर्वासा मुनि आ गए अचानक तो प्रार्थना कर रहे, ऐसे 5 मिनट के लिए इंटेंसली प्रे करो, राधा गिरिधारी, राधा श्याम सुंदर, राधा गोपीनाथ, राधा रस बिहारी, राधा माधव और जगन्नाथ बलदेव से प्लीज मेरे पर दया करो, प्लीज एंड मर्सी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। पहले मैं बोलूंगा उसके पीछे, मेरे पीछे आप बोलो, प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासानी गौरा भक्त वृंद। जय श्री उपस्थित भक्त वृंद की जय। गुरु एवं गौरांग की।